नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। कहने को तो हम आधुनिक नहीं अत्याधुनिक दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन आज हर तरफ घृणा और नफरत की बढ़ती भावना खासकर हम हिंदुओं को किस ओर ले जा रही है, ये सोचकर भी एक बार को डर लगता है। क्योंकि ये घृणा घर परिवार समाज रिश्ते नाते राजनीति शासन प्रशासन कॉरपोरेट हर जगह जड़े जमाता हुआ है, या कहें तो अब ये कल्चर सा हो गया है। इसलिए कॉलम अपन तो कहेंगे में आज मेरे विचार का शीर्षक है, घृणा अब अपना धर्म। ईमानदारी से सोचें, यदि मनुष्य हैं तो जरूर सोचें हम क्या होते हुए हैं। क्या ईमानदारी सदाचारी सत्यवादी विनम्र संतोषी विश्वासी और प्रेम व करुणा अहिंसा के सनातनी व्यापक धर्म की नैतिक मंजिलें पाते हुए हैं, या भ्रष्ट बेईमान झूठे अहंकारी भूखे अविश्वासी घृणा नफरत हिंसा से मन मस्तिष्क चित्तवृत्ति को भरते हुए हैं। मेरा मानना है हम बतौर नागरिक समाज धर्म और राष्ट्र उन वृत्तियों प्रवृत्तियों मन और व्यवहार में वे अवगुण धारते हुए हैं जिसकी कल्पना कलयुग के सर्वाधिक बुरे समय में भी नहीं थी। निश्चित ही किसी कौम और धर्म का नैतिक पतन देश काल की आबोहवा की लीला से है। लेकिन हम भारतीयों की समस्या यह है कि हम पहले से ही कलयुग की जिंदगी जी रहे हैं, तो और कितने कलयुगी बनेंगे, कितने और भ्रष्टाचारी दुराचारी अहंकारी झूठे अविश्वासी नफरती बनेंगे। व्यक्ति घर परिवार कुनबे खाप जात पात राजनीति समाज के व्यक्तिक तथा सामुदायिक व्यवहार में यदि घृणा ही परमोजीवन धर्म बना तो अपना बनना कैसा होगा, कैसा विकसित भारत होगा, कैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे जुमलेबाजी कोई शक्ल लेगी। घृणा का जन्म प्रतिक्रिया में होता है, वह आशंका सुरक्षा ईर्ष्या और भूख से हवा पाती है और मंद कुंद बुद्धि से पोषित होती है। दुनिया की दूसरी नस्लों में भी घृणा का जीवन व्यवहार है, लेकिन हम हिंदुओं की समाज रचना में ऐसे असंख्य कारण हैं जिससे पग पग पर घर घर में भूख ईर्ष्या असुरक्षा इस अनुपात में बढ़ते हुए है कि जहां चुनाव राजनीति में घृणा है वहीं सामाजिक रिश्तों में जलन और नफरत है। व्यक्तिक रिश्तों की असुरक्षा से घृणा के अलग नए रूप हैं। कानून व्यवस्था नैरेटिव बुद्धि सब नफरत में दौड़ती हुई है। इसलिए कटु सत्य है कि 1947 के बाद विकास की कथित सीढ़ियों के हर मुकाम पर भारत का इस नाते पतन है, क्योंकि हर सीढ़ी पर भारतीय दिल दिमाग भ्रष्ट बना है। लोगों की एक दूसरे की समझ में ये हाल है कि कमोबेश हर व्यक्ति सामने वाले का चेहरा व नाम सुन उसकी जात उसके धर्म उसके व्यवहार स्वभाव में या तो खतरा बूझता है ईर्ष्या करता है या उसे लूटने ठगने की तिकड़म बनाता है और नकली व झूठा व्यवहार बनाता है। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर किसी गांव गली का कोई पंच सरपंच जब सामने दूसरे को बूझता है तो ऐसा सहज सरल मनुष्य स्वभाव में नहीं होता है, बल्कि वह सामने वाले को इस नज़र से तौलता है कि इससे मेरा क्या, या किस जात का है किस धर्म का है, मेरे लिए ठीक या बुरा, मुझे चाहने वाला या मेरे से नफरत करने वाला, मेरा वोट है या दुश्मन का, मेरी पार्टी या दुश्मन की पार्टी, मेरी जात का या फला जात का, पैसे वाला या गरीब। और लोगों का इस तरह तौलते हुए भारत के समाज भारत की इकोनॉमी बाजार राजनीति अदालत हर तरह की व्यवस्था में वह व्यवहार है जिसमें एक दूसरे पर विश्वास कम है अविश्वास अधिक, एक दूसरे के प्रति इंसानियत का व्यवहार कम है और नफरत व बदनीयती अधिक है, एक दूसरे की सेवा कम है और लूट अधिक है, भलाई कम है बुराई और स्वार्थ अधिक है, एकल खुरापना अधिक है और दूसरे की चिंता कम है, मैं अहम है और हम का दिखावा है। यह सब क्यों? इसलिए क्योंकि भारत के हम लोग दिमागी तौर पर विकृत हो रहे हैं। आज़ादी के बाद का हमारा कुल सफ़र नैतिक गिरावट का है और भारत के लिए 21वीं सदी गिरावट की पाताल भूमि है। वजह राजनीति है, पहले जात की राजनीति फिर धर्म की राजनीति ने हम हिंदुओं में छीना झपटी का वह संस्कार स्वभाव बैठाया है जिसमें मूल्यवत्ता नैतिकता काबिलियत चाल चेहरे चरित्र का कोई मान नहीं रहा। अब हर व्यक्ति हर जाति हर धर्म अपनी भूख ईर्ष्या असुरक्षा में घृणा के इतने रूप धारे हुए है कि ओर छोर नहीं मिलेगा। निश्चित ही घृणा में दुनिया की बाकी सभ्यताएं भी हैं, लेकिन हिंदुओं और बाकी धर्मों सभ्यताओं का फर्क यह है कि हमने आज़ादी के बाद असमानताओं को नए आकार नए लेवल दिए हैं। बाकी दुनिया में यदि रंग भेद नस्ल भेद वर्ग भेद धर्म भेद जैसी सर्वव्यापी असमानताएं हैं, वहीं हम हिंदुओं की ऐसी कुछ यूनिक खूबियां हैं जिसमें इस राजनीति से मुक्ति संभव ही नहीं है कि दलित और जाट में नफरत नहीं फैलाई जाए, फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड आपस में लड़े नहीं, फॉरवर्ड में ब्राह्मण बनाम राजपूत भिड़े नहीं, वैसे ही बैकवर्ड में भी महाबैकवर्ड दलितों में भी महादलित तो जय श्री राम बनाम महाकाली, मराठा बनाम गुजराती, उत्तर बनाम दक्षिण, हिंदू बनाम सिख आदि आदि की असमानताओं में बस चिंगारी भर भड़कानी है। लोग अपने आप या तो घृणा में सड़क पर उतर आएंगे या वोट की कतार में लग जातियों चेहरों के खिलाफ नफरत में वोट डालेंगे। कोई भी काम बुद्धि विवेक सत्य ईमानदारी काबिलियत की कसौटी में अब नहीं है। हर काम हर फैसला इस स्वार्थ इस घृणा इस बदले और इस ख्यास में है कि प्रतिस्पर्धी दुश्मन है घृणित है। सोचे राजनीति में नरेंद्र मोदी अपने किस प्रतिद्वंदी से घृणा नहीं करते होंगे। सोचे भाजपा का कौन सा राज्यपाल विपक्ष के मुख्यमंत्री को दुश्मन की निगाह से नहीं देखता होगा। कौन सा अधिकारी सचिव नौकरशाह अपनी महत्वाकांक्षा कंपटीशन में प्रतिस्पर्धी को डाउन करने के लिए वे तिक्रमे नहीं अपनाता होगा जो अनैतिक हैं। इस क्रम को भारत में किसी भी लेवल मानवीय रिश्तों सेवा चिकित्सा शिक्षा के दुकानों उद्यमों व्यवहारों में आजमाएं तो चौतरफा समझ आएगा हम लोगों की वृत्ति प्रवृत्ति क्या हो गई है, या तो स्वार्थ है या घृणा। हाल के ऐसे कुछ फोटो दिखे खबरें जानी जिससे सवाल उठा घृणा किस किस तरह बोलती हुई है। ठीक है अरविंद केजरीवाल से मोदी शाह भाजपा सब घृणा करें, लेकिन ऐसा क्या जो उनके छोड़े मकान और नई मुख्यमंत्री आतिशी की उस पर शिफ्टिंग में भी दुश्मन को बदनाम करने का मौका नहीं चुका जाए। क्या तुक है जो एक चुनाव जीतने के लिए हिंदुओं को घृणा के ये टीके लगे कि बटोगे तो कटोगे। मुझे बहुत बुरा लगा जब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला का फोटो देखा, मानो भविष्य का संकेत। उमर अब्दुल्ला कश्मीरी वेशभूषा में ऐठ और अकड़ के अंदाज में और मनोज सिन्हा भी सर्द। और कोई ना माने इस बात को, लेकिन मेरी फील है इस दफा बंगाल में दुर्गा पूजा फीकी थी, राजनीति की घृणा की छाप त्योहार पर थी। क्या अर्थ है इसका जो बंगाल का राज्यपाल ऐलान करे कि वे मुख्यमंत्री के साथ कोई मंच साझा नहीं करेंगे, और ऐसी क्या दुश्मनी जो योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को जेपी की मूर्ति पर माला नहीं चढ़ाने दी, उन्हें रोकने के लिए पुलिस की भारी तैनाती, और मानो भारत व पाकिस्तान के बीच शक्ति परीक्षण हो। घृणा का हिंदू मुस्लिम मामला और हिंसा अपनी जगह है। असल बात है कि जैसे राजनीति की छोटी छोटी बातों में भी खुन्नस है, तो व्यक्तियों परिवारों समाज के रिश्तों में भी आशंका असुरक्षा ईर्ष्या और भूख में घृणा का जो नया व्यवहार बन रहा है वह जातिगत दंगल के अलावा भी है, और इसकी कोई सुध नहीं है। हाल में मालूम हुआ भारत में लड़के लड़कियां शादी के पहले अब प्रिनप समझौते या कि लिखित अनुबंध कर रहे हैं ताकि शादी के बाद कानूनी अधिकारों प्रॉपर्टी के मामले पहले तय हों। गुजरात से खबर थी कि पहले युवती ने दुल्हन बनने का एग्रीमेंट किया, परिवार से मोटी रकम मांगी और फिर शादी से पहले गायब हो गई। इस तरह के व्यक्तिक रिश्तों में भूख असुरक्षा पंगेबाजी नफरत और दुश्मनी में क्या क्या फिर होता है, इसका रूटीन पुलिस थानों अदालतों में अब ऐसा भयावह है जिस पर लिखना महाभारत जैसा होगा। पॉडकास्ट का ये एपिसोड अब यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड का करें इंतजार। बहुत बहुत धन्यवाद।